اگر ہم اس کانفرنس کے بارے میں بات کریں یا اس کی اہمیت کی طرف کے حوالے سے بات کریں تو اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے کہ کسی بھی انسان کے لیے ایک آکسیجن ضروری ہوتی ہے. ایران میں جو یہ کانفرنس ہو رہی ہے اسپیشلی جو ابھی کنٹمپری اویکننگ کی جو بات کی جا رہی ہے, جو اس تحریک کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم سوتے ہوئے میں سے اٹھیں اور جانیں کہ ہمارا مقام کیا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں اور وحدانیت اصل میں ہے کیا, دین اصل میں ہے کیا. صرف ہم صرف اپنے شیلٹرز میں بند ہو کر ان چیزوں کو نہ دیکھیں بلکہ ہم دوسروں کی نظر سے بھی دین دیکھیں کہ دین ہے کیا. ہر دین وحدانیت کا درس دیتا ہے, صرف انداز مختلف ہے, اور ہر دین میں اخلاق اور باہمی ہم آہنگی کی بات کی جاتی ہے جو کہ ہمیں ایک جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد کی طرف لے کر جاتی ہے. اور آج دنیا کو اسی طرح کی کانفرنسز کی ضرورت ہے تاکہ ہم آپس میں اتحاد اتفاق سے رہیں اور اس سوتی ہوئی جو ہے وہ حالت سے باہر نکل آئیں اور جانیں کہ ہمارا کام کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے اور اللہ نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے.
ہماری پرانی کہاوت ہے, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا, پر جو ہمارے میڈیا کے چینل ہیں وہ کبھی آپ کو یہ نہیں دکھائیں گے کہ کیسے, جیسے ایران کا لے لیجئے, ایران میں سب دھرم ہیں اور برسوں سے ہیں, صدیوں سے ہیں, اور آپس میں بڑے اچھے طرح رہتے ہیں. بلکہ ایران کا تو ایک خاصیت ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا دھرم بعد میں آئے گا, پہلے ہم ایرانی ہیں, پہلے ہم پرشین ہیں, یہاں کے ہم رہنے والے ہیں, اس کے بعد مذہب ہے. یہ تو کافی یونیک ہے. اس میں مطلب اگر دنیا میں جائیں ایسے آپ کو اور کوئی ماڈل ملے گا نہیں, جیسے جہاں پر سب دھرم والے, سب مذہب ماننے والے اکٹھے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ دقت ہے ہمارے کہ میڈیا والے یہ جو اس کو کہتے ہیں کہ جو اچھی سٹوریز ہیں, جو امن کی میسج لاتے ہیں, وہ نہیں آتے, زیادہ کانفلکٹ کے, زیادہ مشکلوں کے, جہاں ہمارے آپس میں ویر ہیں وہ زیادہ دکھا رہے ہیں. تو اس میں میڈیا والوں کو کچھ کرنا چاہیے. میں تو کہوں گا اپنے مذہب کے جو نیتا ہیں, سب لیڈر ہیں, کہ آپ لوگ دھرم والے, مذہب والے, پکڑیے ان کو, میڈیا والوں کو, ان کو کہیے کہ جو یہ اچھی اچھی انسٹنس ہیں, اگزامپل ہیں, ان کو بھی لائیں سب کے ذہن میں, سب کو دیکھیں کہ امن بھی ہے اور اچھی طرح رہتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپس میں ویر ہی ہیں. یہ تو ہمارے بہت ضروری ہے کہ میڈیا کو کیسے یہ میسج دیے جائیں.
یہ بات بالکل کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم سب کا رچتا تو ایک ہے, بیج تو ایک ہے, اور ہم سب اس ورکش کی ٹالیاں ہیں, اور یہ من سرشٹی ایک ایسے عمارت کے سمان ہے. خدا کی جو عمارت یہ دنیا, یہ خدا پرست جو پرستان تھا, جو گلستان تھا, جو پیراڈائز تھا, اس میں ہر چیز میں تن سے سبھی سکھی, من سے سبھی سکھی, دھن سے سبھی سکھی, سماج سے سبھی سکھی. تو وہ سویلائزیشن کتنی اونچی تھی, بہشت پیراڈائز کوئی اوپر نہیں تھا, بہشت پیراڈائز یہاں تھا. اور وہ جو خدا کی جو صفتیں تھیں وہ انسان کی لائف میں تھی, پرنتو چلتے 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 جیسے ندی کا پرواہ, دھیرے دھیرے اس میں مٹی مل جاتی ہے, دھیرے دھیرے اس کا کورس چینج ہو جاتا ہے, تو اس کی میں فرق پڑ جاتا ہے. تو دھرم پتا کس لیے آئے؟ وہ خدا کا سندیش لے کے آئے, میسیج لے کے آئے क्यों वो पैगंबर ये पैगाम देकर लेकर के आए कि फिर से उसी रिलीजन का मतलब है वापस उसी स्थिति में जाना जिसमें हम ओरिजिनल थे। ओरिजिनल में क्या रिलीजन आत्मा के था, इंसानियत के अंदर, इंसान के अंदर, रूह के अंदर ट्रुथ था, सत्यता थी, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति। वो जब देह का भान आने लगा, अपने आप को रॉन्ग आइडेंटिटी आ गई, जिस्म का भान आने लगा, तो वो जिस्मानी इंसान जिस्म का रूप रहने से वो जो माया का प्रभाव था, विकारों का प्रभाव था, अट्रैक्शन उसमें आने लगी, तो करप्शन आने लगी, गुण बदलने लगे। मतलब आत्मा की जो शक्ति थी, रूह की जो शक्ति थी, वो मैटेरियलिस्टम में आ गई और खुदा से थोड़ा दूर होते चले गए। पर खुदा तो अपने बंदों को या अपने इंसानों को या अपने मददगारों को या सेवकधारी को, हेल्पर्स को या बच्चों को कभी बिछड़ने तो नहीं देगा, दुखी तो नहीं होने देगा। तो ये फिर से मैसेज दे करके आए। तो डिसिप्लिन का मैसेज क्या है, यानी पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन होवे ना, यानी अपनी सेल्फ सावरनिटी। और सेल्फ सावरनिटी क्या है, रूहानियत को पहचान लेना। और फिर ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे इंसान ने रॉन्ग काम करना शुरू कर दिया, वो रॉन्ग नहीं फिर से राइचियस आ जावे, तो रिलीजन माना, गोइंग बैक इनटू रियल रिलीजन ऑफ द सेल्फ, ओरिजिनलिटी ऑफ द सेल्फ।
जैसा कि हम जानते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस ईरान के शहर तेहरान में हो रही है, और ईरान जो है वो बहुत अहम मुल्क है इस खित्ते में, एशिया की अगर हम बात करें और ख़ासतौर पे जनूबी एशिया की, तो यहाँ के आजकल जो हालात हैं, आजकल हम अगर हालात पे बात करें, जो यहाँ के अंदर एक खींचा तानी पाई जाती है, जो लोगों के अंदर एक अफरा तफरी का दौर है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं, उससे हम बाहर इस तरह ही आ सकते हैं कि हमने जो ये एक स्टेप लिया है, ईरान ने इस दफ़ा जो ये स्टेप लिया है, इसको अगर हम कंटिन्यू रखें, हम बेहतर से बेहतर एक दूसरे के बारे में जानें। और यही एक हल है कि हम, इस्लाम हमें यही सिखाता है कि जो चीज़ें हम में एक जैसी हैं उनकी तरफ हम आएं, बैठें, बात करें, डायलॉग हो, और उसके बाद किसी नतीजे तक पहुँचें जो कि हमें बाहम इकट्ठा कर दें। और मैं इस उम्मीद, मुझे ये उम्मीद है कि ईरान वो मुल्क बनेगा जो कि हम इस एशिया में हम सबको इकट्ठा करके हमें एक दुनिया की मजबूत कौम बनाएगा, और हम एक कौम बन के उभरेंगे और तमाम अदियान एक दूसरे की इज्जत करेंगे और हम इस जंग के माहौल से बाहर आ सकें।
उर्दू बोलने वाले, उर्दू समझने वालों, मेरी आपसे ये बहुत हृदय से प्रार्थना है कि इस वक्त आपको अमन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस वक्त बहुत मुश्किलें उससे सामने हैं। जो मर्जी जो कहें, जो मर्जी करना चाहें, अगर आप सो लोग सब खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई हथियार इस्तेमाल किए जाएं, खून खराबा हो, यहाँ कोई वॉर हो, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ये कर सके। आप अपने लीडर्स को के पास जाइए, उनको कहिए हम नहीं ये चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं हम एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बनाएं, हम हमारे परिवार सुखी रहें, हमारे बच्चे सुखी रहें। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ताकि ये संकट टल जाए। इसमें मैं तो कहूँगा आपके ऊपर अल्लाह का कृपा है कि कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना चाहिए। ये अल्लाह का कहना है, अल्लाह के लिए कीजिए कुछ ज़रूर।
सभी धर्म वाले, ये जो सभी बार बार ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, वास्तव में रिलीजन तो खुदा लड़ना नहीं सिखाता, खुदा तो शांति दाता है, परंतु ये इंसान आपस में इस यहाँ पर मैसेज में यही धर्म का इसमें डायलॉग में जो अब तक सुना, जो अब तक बोला बोला यही कि मिसेज कोई धर्म कभी लड़ना नहीं सिखाते, परंतु मिसयूज है ना धर्म का, उस वो लड़ाई कराते हैं। अब वो फिर से जब सच यूज़ प्रैक्टिकल में लावे, दूसरों को भी सिखाने की बात नहीं, क्यों, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले तो खुद को अप्लाई करना है ना, अगर खुद में ही अप्लाई नहीं है तो दूसरों को क्या प्रैक्टिस सिखाएंगे। तो पहले खुद जब जीवन में आता है, खुदा हमसे राज़ी होता है, बाकी उसके बंदे भी राज़ी होते हैं, तो लड़ाई झगड़ने की तो बात ही नहीं। राज नहीं समझा ना खुदा के मैसेज का, इसलिए एक दूसरे लड़ाई होती है। राज समझ लिया, हम एक खुदा के बच्चे हैं, एक बगीचे के फूल हैं, उस ज्ञान सूर्य से सदा अपना संबंध रखना है जो ज्ञान का सागर है, सब तालीमों की तालीम देने वाला है, सर्वशक्तिवान है। वो शक्ति किस बात की देता है, वो जो हमारे अंदर खराबियां कमियां आ गई हैं ना, उसको जीतने की शक्ति देता है। तो जब हमारा उनके साथ संबंध पक्का होएगा, तो हम एक धर्म एक राज, यानी एकता का मतलब है कि वो एक ने जो सिखाया है ना, सब उस एक को फॉलो करके, एक ही शिक्षा को, उसकी शिक्षा क्या है, तुम जिस्म नहीं हो, तुम रूह हो, और रूहानियत में क्या है, शांति प्रेम पवित्रता आनंद है, तो ना अहंकार है ना कोई बुराई है, सर्वगुण संपन्न आत्मा बन जाती है, इंसान फरिश्ता बन जाता है। क्यों, कि रिश्ता बदल गया ना, देह का रिश्ता बदल करके रूहानियत का रिश्ता आ गया। तो ऐसा ही इस कॉन्फ्रेंस का मैसेज जो है वो ये है कि अभी आपस में हम रूहानी रिश्ता जोड़ करके फरिश्तों की दुनिया यहाँ पर लावें, यही खुदा का भी संदेश है और यही हम सब का एक दो के प्रति भी संदेश है अथवा मैसेज है। ओम शांति पीस, और खुदा के नाम से पीस, खुद में पीस हो, सब एक दो के साथ पीस।
और मैं बहुत आभारी हूँ सहार टेलीविज़न का, इस वक्त मेरे को ये मौका दिया कि आपके साथ अपने कुछ जो सोचने के मेरे कुछ ख्याल हैं आपके साथ मैं बांट सकूं। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का, यहाँ जो सुप्रीम लीडर हैं और जितना उलेमा हैं, जो ये कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइज़र हैं, बहुत आभारी हूँ मैं कि हमें मौका दिया कि यहाँ इस समय ईरान आए और अपने जो ख्याल हैं वो आपके सामने रखें। और जितने उर्दू बोलने वालों को है, फारसी बोलने वालों को है, आपका कल्चर तो एक दूसरे के साथ एकदम मिला हुआ है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, ये आपके जहन के अंदर है। और दुनिया का सबसे तकरीबन पुराना कल्चर है, और ये तो शुरू से अमन में रहता है, अमन से ही रहते हैं, मज़हब में बहुत ख़ास विश्वास रखते हैं। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ मैं आपको, और मैंने आपको मौका दिया मैं आपको यही कहूँगा, खुदा हाफिज, आदाब।
हदफ अज़ बारगुज़ारी हमायश।
इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी हदफ ये था कि मुख्तलिफ अदियान के दानिश्वर हजरात मौजूदा बेदारी की तहरीकों को मजीद मुनज़म करने और मुख्तलिफ अदियान के दरमियान इत्तेहाद व यकजहती के फ़रोग़ के लिए तबादला ख्याल करें और अमली तजावीज़ दें ताकि इन तहरीकों को मुनहरिफ होने से बचाया जा सके। यूं भी किसी तहरीक के लिए इत्तेहाद व यकजहती और उनके रहनुमाओं की बाहमी हम आहंगी नहायत ज़रूरी होती है। इस कॉन्फ्रेंस का एक और बड़ा मकसद ये भी है कि मुसलमानों और दूसरे अदियान के दानिश्वरों और मुहक्किकीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए ताकि वो मिल बैठकर अपने अपने अदियान की तालीमात की रोशनी में हालिया अवामी तहरीकों को दुरुस्त सिमत में रहनुमाई कर सकें। मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्रेंस नौजवान नस्ल को बेदार करने और मौजूदा बेदारी की तहरीकों में उनके किरदार को फैसला कुन और मुअसर बनाने में कामयाब रही है। आज बिलाशुबा तब्दीलियों का दौर है। तब्दीली के इस दौर में अंदरूनी और मानवी और रूहानी तब्दीलियाँ भी ज़रूरी हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि मुख्तलिफ अदियान के रहनुमा और दानिश्वर इस अहम मसले को गहराई से समझें और बाद में अपने इदराक की बुनियाद पर मुआशरे में तब्दीली के लिए राह हमवार करें। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाली बातचीत इस बात का बायस बनेगी कि मुख्तलिफ अदियान के नुमाइंदे एक मरकजी सेक्रेटरिएट बनाने पर तैयार हो जाएंगे जहां से पूरी दुनिया की रहनुमाई की जा सकेगी और इस तरह ये सेक्रेटरिएट मौजूदा आलमी बेदारी के लिए रहनुमा असूल भी वजा कर सकेगा। इसी तरह अगर ये सेक्रेटरिएट अपना काम शुरू कर दे तो इत्तेहाद व वहदत और मुख्तलिफ अदियान के दरमियान यकजहती और हम फिक्री का पैगाम पूरी दुनिया तक फैल जाएगा। इस बात का भी इम्कान है कि मुख्तलिफ इलाही अदियान के नुमाइंदों पर मुश्तमिल आलमी सतह पर एक पार्लियामेंट भी तश्कील पा जाए जहाँ पर हालिया इंसानी बेदारी के मौजू को जेर बहस लाकर उसको अमली जामा पहनाया जा सके। मैं मजमूई तौर पर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब और तामीरी करार दे सकता हूँ। सौ जानदे व काबिल तवज्जो।